ही मातृभंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यताहसी सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यताहसी सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो मातृभंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यदाहसी सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो
बहुत बहुत समय पहले एक व्यापारी जो कि संसार में इतना डूबा था और संसार में इतना आसक्त था कि उसे खबर ही नहीं थी कि जीवन में और भी कुछ करना है और जीवन की कोई और भी दौड़ है और जीवन की कोई और भी प्यास है। संसार और संसारिकता में डूबा हुआ वह व्यापारी अपने जीवन में लौकिकता में अपने व्यापार में इस तरह भाग रहा था कि जहां धन और प्रतिष्ठा और पद और पोजीशन इसके अतिरिक्त जीवन में और कुछ भी लक्ष्य नहीं था। उसका एक मित्र उससे मिलने आता है जो कि धार्मिक स्वभाव का है और प्रभु प्रेमी है। वो मित्र उससे कहता है कि आखिर तुम कब तक भागोगे और क्यों भाग रहे हो और किस लिए ये दौड़। मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ तीर्थ यात्रा चलो। सोचता है इस तीर्थ यात्रा से इस मित्र का कोई परिवर्तन हो जाएगा। वो व्यापारी तो नहीं मानता है, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद अनुनय विनय के बाद वो तैयार होता है और दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए निकलते। कई सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, परंतु ये मित्र देखता है कि ये जो व्यापारी है उसकी बुद्धि बस वैसे ही है। अभी भी व्यापार का चिंतन, अभी भी व्यापार की बातें, अभी भी पैसों का ही चिंतन है। बस नदियों का स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का स्नान। कई सारे सत्संगों में जाते हैं, कई सारे प्रवचन सुनते हैं, इस स्थान से उस स्थान, इस मंदिर से उस मंदिर। परंतु ये मित्र देखता है कि ये व्यापारी मित्र जो है वैसा ही है। इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अंततः वो सोचता है क्यों ना इसे एक विशाल शमशान घाट है वहां ले जाऊं, हो सकता है शायद वहां का दृश्य देखकर कुछ परिवर्तन हो। और वो मित्र अपने व्यापारी मित्र को लेकर शमशान घाट शमशान भूमि में पहुंचता है। बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आर्तनाद है, जलती हुई चिता, मृत शरीर और वातावरण में एक विरक्ति का वातावरण। और यहां जब वो दोनों पहुंचते हैं और ये सब कुछ देखते हैं तो जो व्यापारी है एकदम से दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। इस मित्र को लगता है शायद तीर लग रहा है, शायद ये चिताओं को जलता हुआ देखकर अंदर कुछ परिवर्तन जाग रहा है, शायद जीवन की नश्वरता का कुछ ज्ञान कुछ बोध हो रहा है। और वो व्यापारी मित्र रोने लगता है, दुखी होता है, इसे लगता है शायद जीवन की व्यर्थता का इसे ज्ञान हो रहा है। वो अपने व्यापारी मित्र से पूछता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो कहता है मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि व्यर्थ ही मैंने कपड़ों का व्यापार किया, अगर लकड़ियों का व्यापार किया होता तो आज न मालूम कहां के कहां होता। लोग तो कितने मरते हैं रोज, अच्छा होता अगर लकड़ियों का व्यापार करता, जितना पैसा आज है उससे कई गुना अधिक होता। जीवन भर जिसने जो सोचा है, जीवन भर चेतना जिस चिंतन में रही है, वो कहीं पर भी जाए उसी चिंतन को साथ लेकर चलती है और संसार और संसार की बातें उसे अपना गुलाम बनाकर रखती है। अध्यात्म अर्थात इसी सांसारिक दासता से मुक्त होना, अध्यात्म अर्थात इसी संसार की गुलामी से मुक्त होना, तृष्णाओं से मुक्त होना, वो तृष्णाएं जो हमें भटकाती है, भगवान से दूर ले जाती है। अ रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड, जो संसार के ही पीछे भागते रहते हैं, अंततः हाथ में कुछ भी नहीं आता। क्या लंबे समय जो चिंतन चलता है वही हमारे साथ साथ चलता है, लंबे समय जिस प्रकार की विचारधारा है वही साथ साथ चलती है। क्या करें जिससे परिवर्तन हो जाए। योग का परिणाम है परिवर्तन। तीव्र पुरुषार्थ की एक शब्द में परिभाषा है परिवर्तन। कितना भी पुरुषार्थ कर लिया, कितने भी बजे उठ लिए, कितना भी योग लगा लिया, कितना भी मुरलियां पढ़ ली और ज्ञान का चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, सुना और सुनाया, परंतु अभी चेतना में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो शायद जरूर कुछ तो खोज है। तो आज इस भक्ति में लक्ष्य रखना है, केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते अंतर जगत की यात्रा करनी है, सुनते सुनते अपने जीवन को देखना है, सुनते सुनते जब से ब्राह्मण बने तब से आज तक क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कौन से विकर्म हुए, कौन से सत्कर्म हुए और वो जो विकर्म हुए वो क्यों हुए। सब कुछ ज्ञात था, सब कुछ ज्ञान था, उसके बाद भी ये परवशता, ये विवशता, ये दासता, ये गुलामी, ये स्लेवरी क्यों। आज सुबह की अव्यक्तवाणी इसी गुलामी से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा है, तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है। और किसको गुलाम बनाना है, किसको गुलाम बनाना है? पांच विकारों को और पांच तत्वों को। तत्व परिवर्तन हो जाए। किसी मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा था, सृष्टि के परिवर्तन में सबसे ज्यादा मददगार कौन है? कौन है? महाविनाश। सृष्टि के परिवर्तन में सबसे ज्यादा सहयोगी कौन है? ये पांच तत्व। और इन तत्वों को हमें पावन बनाना है। प्रकृति जीत परमात्मा के लिए गायन नहीं है, हम आत्माओं का गायन। प्रकृति के स्वामी हम हैं। जब आत्माएं पवित्र बनेगी तब प्रकृति भी पवित्र बन जाएगी। तो आज की मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। सतयुग में इन तत्वों का क्या हो जाएगा उसका वर्णन किया है। और एक सबसे बड़ी बात जो कहती है, जो कि बहुत कम मुरलियों में आई है, इन विकारों को तुम्हें हराना नहीं है, इनको क्या कर देना है, इनका रूप ही बदल देना है। अगर इन विकारों को हराया, किसी मुरली में बाबा ने कहा, यदि कोई राजा दूसरे राजा को पराजित कर देता है तो वो बदला लेता है। इन विकारों को तुमको पराजित नहीं, इनको रूप ही बदल देना है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण। पांच विकार और पांच तत्व, इनको परिवर्तन करना है। इस मुरली में ढेर सारे सामान दिए हैं। मुरली की शुरुआत से अंत तक लगभग 16 सामान है। और इस विश्वविद्यालय की यह विशेषता है कि यहाँ पर भक्ति नहीं सिखाई जाती है। या एकमात्र ये संस्था है संसार की जिसमें भक्ति के क्या राज है वो भगवान ने आकर सुना है। एकमात्र ये संस्था है जो भक्ति में त्योहार है, भक्ति में जो रिचुअल, जो धारणाएं हैं, जो प्रथा है, उनका रहस्य क्या है वो यहाँ पर समझाया है। और संसार की किसी भी संस्था में ये रहस्य नहीं। तो पांच विकार है, पांचों को परिवर्तित करना है। पहले इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है काम। क्या करना है? काम को शुभ कामना में परिवर्तित कर देना है। क्योंकि काम एक ऐसा विकार है जिसके लिए बाबा ने कहा है, तुम आत्माओं ने द्वापर से सबसे ज्यादा यदि विकर्म किससे किए हैं तो वो काम से किए हैं। और जब जब काम विकार का दमन किया गया संसार में, सप्रेशन, रिप्रेशन, परिणाम घातक हुआ। दो ही मार्ग है संसार में, एक है भोग का मार्ग जिसमें संसार डूबा हुआ है, एक दूसरा मार्ग है जिन्होंने ये जाना कि ये विकार बहुत दुख देने वाला है, ये विकार से कुछ भी प्राप्ति नहीं है, केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने भागने का मार्ग चुना, दमन का मार्ग। एक भोग का मार्ग, एक दमन का मार्ग। पर जिस जिसने दमन किया वो सारे विक्षिप्त हुए, क्योंकि वो एक आग की तरह है वासना। जब तक इंद्रिय सुखों की व्यर्थता का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उससे वैराग्य नहीं आता। इंद्रिय सुखों में चार मुख्य दोष है। एक अल्पकालीन, दूसरा डिसेप्टिव है, धोखा देते हैं। व्यक्ति सोचता है इसमें बहुत सुख मिलेगा परंतु सुख उतना उसको मिलता ही नहीं। तीसरा इल्यूजरी, भ्रामक है, भ्रांति है, जैसे रुण्य का पानी, जैसे मृग मरीचिका, दूर से दिखाई देता है वहां पानी है, नजदीक जाओ तो वहां कुछ भी नहीं है। काम विकार भी वैसा ही है। चौथा काल्पनिक, जब तक चीजों की व्यर्थता का ज्ञान न हो वो छूटती नहीं, पकड़ के रहती। जब पता चल जाए ये व्यर्थ है तभी वो छूटती है। चिंतन व्यर्थता का करना, चिंतन उसकी क्षणभंगुरता का करना, तो ही वास्तविक वैराग उत्पन्न होगा। नहीं तो सारा संसार काम में डूबा हुआ है, सारा संसार देह के इर्द गिर्द घूमता है, सारा मीडिया, सारी फिल्में, सारी किताबें, सारा फैशन देह और देह के प्रदर्शन के पीछे घूमता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हे अर्जुन जन्म के चिंतन, जन्म का चिंतन कर, दुख है उसमें, मृत्यु का चिंतन कर, दुख है उसमें, बुढ़ापे का चिंतन कर, दुख है उसमें, बीमारी का चिंतन कर, दुख है उसमें, और इससे कुछ भी और कोई भी छूट नहीं सकता। तो सबसे पहला रूपांतरण करना है काम का, काम को बनाना है शुभ कामना, एक ही शुभ कामना कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। अब तक विकारों में गोते खाए क्या मिला, दुख दर्द पीड़ा संताप, अब इससे बाहर निकलना है। शुभ भावनाओं की लिस्ट बनानी है, काम व्यक्ति को वस्तु बना देता है, शुभ चिंतन अर्थात सामने जो दिखाई दे रहा है वो देह नहीं है, वो आत्मा है, और उसका कल्याण है देहभान से ऊपर चले जाना। दादी प्रकाश मणि ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिव बाबा से ज्यादा मैं किसी से भी प्यार ना करूं, पहली बात, और दूसरा इस ब्राह्मण परिवार से कि कोई भी आत्मा मुझसे शिव बाबा से ज्यादा प्यार ना करे। मैं भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करूं और दूसरी आत्माएं मुझसे भगवान से ज्यादा प्यार ना करे। मैं तो अपने आप को किसी में नहीं फंसाया पर दूसरे मुझ में फंसे हैं, ये भी तो बंधन है, वो भी आत्मा है। और दूसरी आत्माओं का पतन करना, दूसरी आत्माओं को गिराना, ये बहुत बड़ा बोझ है। श्री रामकृष्ण परमहंस की शादी होती है, मां शारदा आती है, वो उनसे पूछते हैं क्या तुम मुझे गिराने आई हो, वो कहती है नहीं, मैं आपको अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने आई हूं, मददगार बनने आई हूं। टेस्ट ऑफ लस्ट इज फॉल ऑफ मैन, जहां जहां दृष्टि चंचल हो रही है, वृत्ति चंचल हो रही है, शुभ चिंतन करना है, शुभ कामनाएं रखनी है कि ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, इसको मुझे गिराना नहीं है, खुद भी गिरना नहीं है और दूसरों को भी गिराना नहीं है। एक है खुद गिरना अकेले बंद कमरे में, एक है दूसरों को लेके गिरना, उसमें बोझ ज्यादा है। मेरी वजह से अगर कोई दूसरी आत्मा देहभान में आ रही है तो बोझ किस पर है, मुझ पर। कोई हमें देखे तो उसे भगवान की याद आए। बाबा के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जब तुम बोलो तो आत्माओं को बाप की याद आ जाए। तो पहले काम को परिवर्तित करना है। जिस व्यक्ति के प्रति कामुक इच्छाएं और तृष्णाएं और दृष्टि है उसका श्रेष्ठ चिंतन करना है, वो है कौन, मेरा क्या कर्तव्य है उसके प्रति। महात्मा गांधी 1930 में श्रीलंका पहुंचे, स्टेज प्रोग्राम था और मंच संचालक ने परिचय दिया कि आज हमारे बीच में महात्मा गांधी आए हैं और साथ में उनकी मां भी आई है। वो अपनी पत्नी को लेके गए थे कस्तूरबा, जिसको वो बा कहते थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी मां भी साथ में आई है, जब महात्मा गांधी का टर्न आया भाषण का, तो उन्होंने कहा, इन्होंने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी मां है। संबंध ही परिवर्तित हो गए। उस ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के बाद 1906 पहला काम ये, दूसरा क्रोध अग्नि को क्या कर देना है, क्रोध को दबाना नहीं है, दबाए तो क्या होगा, और भड़केगी जैसे प्रेशर कुकर, दबा के रखा क्रोध को, सेटल्ड एंगर इज नोन एज हेट्रिक। नफरत की परिभाषा क्या है, लंबा समय से जो क्रोध दबाया रहता है वो क्या बन जाता है, नफरत, घृणा बन जाता है, व्यक्ति के प्रति घृणा है, उसको देखना नहीं चाहते, उसका प्रेजेंस इरिटेट करता है, वो यहां से चला जाए, इतनी नफरत भरी है। और भगवान के महावाक्य है कि यदि तुम्हारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तो तुम संपूर्ण नहीं बन सकोगे। जिसने जो कुछ भी किया हो, जैसा भी किया हो, हम कौन है, हम पूर्वज आत्मा है, हम श्रेष्ठ आत्मा है। अपराध, अपराधी का सबसे बड़ा दंड है क्षमा, हमने माफ कर दिया उसको, हम किसी के लिए भी घृणा नहीं रख सकते अपने मन। तो क्रोध अग्नि को क्या कर देना है, दूसरा परिवर्तन योग अग्नि में रूपांतरित कर देना है। क्रोध में जो आग है, क्रोध में जो आवेश है, क्रोध में जो एंग्विश पावर, और क्रोध में व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है ना, शारीरिक शक्ति ज्यादा आ जाती है, तोड़ फोड़ करता है, वैसे उसको कहो तो ये टेबल उठा नहीं सकेगा, ये सोफा नहीं उठा सकेगा, क्रोध में आए तो सोफा उठा के फेंक देगा, क्योंकि क्रोध में पावर बहुत है, परंतु वो निगेटिव ऊर्जा है। उसको क्या करना है, योग अग्नि में परिवर्तित कर देना है। क्रोध अगर करना है तो इस बात का क्रोध कि मैं संपूर्ण क्यों नहीं बन रहा, क्रोध यदि करना है तो इस बात का क्रोध, ये संस्कार मेरा जाता क्यों नहीं, ये एडिक्शन छूटता क्यों नहीं, आदत अभी तक जाती क्यों नहीं, क्यों रोज अमृत वेला ऐसा होता है। साधारण जो तपस्या मुझे करनी चाहिए थी वो मैं क्यों नहीं कर रहा, उसका क्रोध, भगवान से इतनी दूरी क्यों, उसका क्रोध, वो क्रोध। अगर क्रोध को दबाया जाए तो वो भयंकर रूप धारण करता है। क्रोध के कारण को ढूंढना है सूक्ष्म, जरूर कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है। क्रोध को जीतना है धैर्य से, क्रोध को जीतना है इच्छाओं को कम करने से, अपेक्षाएं कम करने से। अपनी ही लिस्ट बनानी है किन किन परिस्थितियों में मैं क्रोधित हुआ और परिणाम क्या था। विदेश की एक बहन ने अनुभव सुनाया है, बहुत समय पहले, लगभग 30 साल हो गए उस बात को, एक बार सेंटर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सभी भाइयों बहनों ने सेवाएं दी थी और वो पैसे उस बहन ने दूसरी बहन को रखने के लिए दिए और उस छोटी बहन ने वो पैसे गुम कर दिए। और फिर इन्होंने उसको थोड़ा बोल दिया या डांट दिया और बाद में वो पैसे मिल गए। इस बहन ने अनुभव सुनाया कि जो मैंने उसको डांटा था, कुछ बोला था उस वर्ष, उस बात को अभी 30 साल हो गए, परंतु फिर भी उसके और मेरे संबंध में जो क्रैक थी वो अब भी है, अभी तक भरा नहीं वो घाव। आवेश में और क्रोध में उसको जो बोल दिया, उसके बाद भी हम लोगों ने साथ में ही सेवा कर रहे, अभी भी साथ में है, परंतु वो क्रैक अब भी है। क्रोध क्यों, कैसे, कब, कहां आता है, उसको संशोधन करना है। तीसरा है काम क्रोध लोभ। लोभ को क्या कहना है, करना है चाहना, आज की मुरली में महावाक्य है बाबा के कि क्या करो, कौन की चाहना हो तुमको, बाप समान बनने की चाहना और बेहद के सेवाधारी बनने की चाहना, इस लोभ को लाओ, ज्यादा से ज्यादा खजाने ले लो, भगवान का जो ज्ञान है उस ज्ञान को हप कर लो, इतना बड़ा खजाना है, क्या करूं और कैसे उस ज्ञान को ले लूं, अपने अंदर कैसे समा लूं, पवित्रता का इतना खजाना भगवान ने दिया है, कैसे इस पवित्रता के खजाने को ले लूं, खुशी का खजाना है, संकल्प का खजाना है, दुआओं का खजाना है, श्रेष्ठ कर्म का खजाना है, संतुष्टता का खजाना है, समय का खजाना है, ये सारे खजानों के प्रति लोभ ले लो। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने दो शक्तियों का वर्णन किया है, एक शक्ति है संग्राम करने की शक्ति और दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। भगवान के सारे ज्ञान का संग्रह कर लो, बुद्धि ऐसी दिव्य बन जाए कि जिसमें ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें समाई हो कि किसी भी परिस्थिति में वो ज्ञान पॉइंट निकले और हमारी मदद करे। अभी अभी संडे मुरली चली थी दिव्य बुद्धि और उसके बाद चली थी दिव्य नेत्र। लिफ्ट है, गिफ्ट है, प्लेन है, अंतर्मुखी यान है, फ्लाइंग सॉसर है, रूहानी वायरलेस सेट है, याद आ रही, लोभ, ईश्वरीय लोभ उत्पन्न करना, स्पिरिचुअल ग्रीड, फिर है मोह, मोह को क्या करना है, मोह को क्या करना है, कैसे रूपांतरित करेंगे मोह को, बाबा में मोह और संसार के मोह का क्या करेंगे, अपने मोह को थोड़ा सार्वजनिक कर दो। बाबा ने कहा मोह अर्थात उस व्यक्ति के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, ऐसा मोह बाप में हो जाए, ऐसा मोह उससे हो जाए कि तुम्हारी आंखों में बाप दिखाई दे और जब तुम बोलो तो केवल उसके महावाक्य बोलो, बोलती जे अर्णव पीयूषा से, तुम जो बोलो वो अमृत हो, उसी के महावाक्य हो जो दूसरों को बाप की याद दिला दे। तो मोह बढ़ाना है किससे, किससे, बाप से और दुनिया से, ईश्वरे अनुराग विषय विराग, एक मोह बढ़ता जाएगा दूसरा अपने आप छूटता जाएगा, रिप्लेसमेंट चाहिए रहती, नई आदत निर्माण करो पुरानी आदत अपने आप छूटती जाएगी, नए व्यक्ति से प्रेम करो तो पुरानी की याद धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब भगवान आया है, अब उससे प्यार करो, मेरे से अधिक और किसी से भी प्यार मत करना। बाइबल में लिखा है, भगवान कहता है उसमें, आई थाय लॉर्ड थाय गॉड आई एम अ जेलस गॉड, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे से अलावा किसी से भी प्यार मत करना नहीं तो मुझे जलन होती है। आई एम अ जेलस गॉड, सब कुछ छोड़कर केवल मेरा चिंतन कर, क्यों, क्योंकि सभी के प्यार को देख लिया, ऐसा इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने आज तक हमको धोखा नहीं दिया, यह है जो हम कह सकते हैं यह सबसे अच्छा है, कभी ना कभी किसी ना किसी समय संकल्प में, बोल से, कर्म से, व्यवहार से, मौन से जरूर धोखा दिया। इस संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई भी सगा नहीं है, सब सौतेले, सुलत, सब कैसे हैं, सौतेले। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप से प्यार करो और बाकी से क्या करो, ऊपर ऊपर से प्यार करो, ऐसे हाथ घुमा देना बस, सौतेली मां की तरह बस, जिगरी प्यार एक से। तो तो मोह को रूपांतरित कर दो, भगवान से मोह बढ़ा दो। जितना मोह संसार के लोगों से है उससे ज्यादा भगवान से मोह। किसी से, किसी माँ का अपनी बेटी से मोह होता है, माँ का बेटी का माँ से, बच्चे का पिता से, कितनी बार फोन करते, पति का पत्नी से, प्रेमियों का एक दूसरे से, बार बार फोन करते, बार बार मैसेज करते, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहां हूँ, अभी मैं वहां पहुंचा हूँ, अभी मैं वहां पहुंचा हूँ, तुम कहाँ हो, आई मिस यू। भगवान को कहा है कभी आई मिस यू? आई मिस यू टू। अभी एक काम करना है, सबको काम दे रहे, यहाँ भोली भोली माताएं बहुत बैठी है, परंतु मोबाइल कौन कौन यूज करता है? सभी सभी करते हैं ना। अभी उसमें एक काम करना है, आज से एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना है, ठीक है? उस ग्रुप में अपने मित्र का नंबर ऐड करना है और उसको निकाल देना, ताकि ग्रुप बन गया जिसमें एक ही व्यक्ति हो, मैं और केवल मैं, ठीक है? और उसमें सारे दिन भर बाबा को कुछ कुछ लिखते रहना है, बाबा मैं यहाँ हूँ, अभी भट्टी में हूँ, बाबा आज अमृत वेला ज्यादा नींद आ गई, अभी ठीक हूँ, अभी अभी आंखों से आंसू आए, किसी ने कुछ बोल दिया, अब ठीक हूँ, अभी मैं रो रहा हूँ, वो भी लिख देना उसमें, टाइप करते जाना दिन भर, बाबा को अपडेट करते जाना। अपने दोस्तों को कैसे अपडेट करते हो? नाउ हियर। अपने दोस्तों को भेजते रहते हैं ना मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सतगुरुवार, हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी डेथ एनिवर्सरी। वैसे हर पल बाबा को लेटर लिखते रहना, टाइप करते रहो, बाबा कॉमा अभी ठीक चल रहा है, थोड़ी देर के बाद दूसरा, बाबा भट्टी में बैठा हूं पर नींद भयंकर आ रही है, भयंकर नींद चालू है, आंखें खुली है पर खुली आंखों से नींद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने मधुबन में अपनी डायरी दिखाई सुबह की, ओम शांति भवन की मुरली क्लास की, इतनी नींद आ रही थी और नींद में मुरली लिखी पूरी गोल 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 गोल, क्या लिखा पता ही, उसे ही आश्चर्य हो गया, ये क्या मैंने लिख दिया, ये मुरली पूरा गोल 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 गोल, क्योंकि नींद में लिखा पूरा, भयंकर प्रकोप नींद का। एक है अमृत वेला सोने वाले, चार कैटेगरी है सोने वालों की, ब्राह्मण परिवार, एक अमृत वेला सोते हैं, दूसरा मुरली में सोते हैं, तीसरा क्लास में सोते हैं, और चौथा जब डिस्कशन चालू है ज्ञान का उसमें भी सो जाते हैं। मोह बढ़ाना है किससे? बाबा से। कैसे बढ़ाएंगे? बार बार बातें करने से। कैसे बढ़ाएंगे? दिनचर्या में कई बार उसका आह्वान करने से, आ जाओ। कैसे बढ़ाएंगे? बार बार शुक्रिया करने से, हर बात के लिए शुक्रिया, यहां पर आए इसके लिए धन्यवाद। हम अपने पुरुषार्थ से आए या बाबा लेकर आए? और हमने पुरुषार्थ कुछ नहीं किया, संकल्प तो हमारा था ना, चाहे हम कुछ भी करें, ईश्वरीय कार्य जो कुछ हो रहा है, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो परमात्मा कृपा से हो रहा है। जगदीश भाई जी कहते थे, बाबा है भक्ति मार्ग पर तुमको साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तेरी कृपा से कर रहे हैं, बिना तेरी कृपा से कुछ नहीं हो सकता, उसकी छत्र छाया ऊपर है, इसलिए ये कार्य हो रहा है, ये सेवा हो रही है, ये पुरुषार्थ हो रहा है। अगर वो हट जाए तो हम गिर जाएंगे। और ये कैसे समझे कि हम पर भगवान की कृपा हो रही है? इसका प्रमाण क्या है? खुशी। इसका प्रमाण क्या है कि हम पर भगवान की निरंतर कृपा हो रही है? बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब महान आत्माओं का दर्शन हो रहा हो, जब श्रेष्ठ परिवार का दर्शन हो रहा है, संसार की महानतम और पवित्रतम ब्रह्मचारी आत्माओं का दर्शन हो रहा है, तो समझना कि भगवान की कृपा हम पर हो रही है, और जो अब हो रही है। ऐसे विशाल संगठन में आ जाना जहां संसार में चरित्र का अकाल पड़ा हुआ है, वहां इतने सारे चरित्रवान आत्माएं एक साथ मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, इतनी बड़ी बात है। चारित्रिक पतन संसार में हो रहा है, कहीं चरित्र नहीं, विकार ही विकार है, विकारों की आंधी है, तूफान है, सुनामी। और यहां पर ब्रह्मचारियों का और ब्रह्मचारिणियों का संगठन, और यहां पर हमारी पालना करने वाली टीचर बहनों का संगठन। कौन है ये टीचर? कौन है? कौन है? ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसी महान आत्माओं की पालना में हम सब कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य। ऐसी बाल ब्रह्मचारिणियों की पालना में हम कर रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य। जिनके सामने संसार नतमस्तक होता है, हे मां कहता है, हे जगत माता कहता है, वो यहां बैठे। तो एक बार सभी बहनों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, लास्ट है अहंकार, उसका क्या करो? देह अभिमान को देही अभिमान में बना दो, अहंकार है उसको समान में परिवर्तित कर दो। समान अर्थात मैं महान आत्मा हूं, यह अहंकार की वाणी नहीं, यह समान की वाणी है। अगर मैं महान हूं तो मेरे कर्म महान होने चाहिए, मेरे बोल महान होने चाहिए, मेरे संकल्प महान होने चाहिए, दृष्टि बुद्धि सब कुछ महान होनी चाहिए। पांच विकारों को बाबा ने कहा रूपांतरित कर दो, परिवर्तित कर दो, दबाओ नहीं इनको, इनसे झगड़ा नहीं करो, इनसे लड़ाई नहीं करो, योद्धा नहीं बनना है, उनको समझना है, स्टडी करनी है उनकी, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस रूप से आते हैं, और उनको धीरे 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 बदल देना। उसके बाद में बाबा ने कहा पांच तत्व सतयुग में कैसे होंगे? सबसे पहला सूरज की बात की, सूरज क्या करेगा तुम्हारे लिए? भोजन बनाएगा। और अब कौन बनाता है? सूरज भोजन बनाएगा। हवा क्या करेगी? दो काम करेगी, पंखा और दूसरा म्यूजिक, म्यूजिक सिस्टम, सतयुग की म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल सिस्टम ऑफ गोल्डन एज। हवाओं से सांस बजेंगे, हवाएं जब गुजरेगी पत्तियों से तो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मधुर रागिनी आवाज आएगी। उसके बाद में धरती, अन्न और फल, कौन कौन से फल? नमक और चीनी, होगा क्या आज की मुरली से? तो कब आया ये? और इन दोनों चीजें का, चीजों का सारा संसार गुलाम भी है कि नहीं? और क्या होगा धरती में? प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी होगी अलग अलग डिजाइन की, यह धरती के लिए कहा। जल के लिए क्या कहा? जल कैसा होगा? जैसे यहां नदियों का जल होता है जड़ी बूटियों वाला सुगंधित, वैसे वहां का जल सुगंधित होगा, शक्तिशाली होगा, पवित्र होगा। दूध की नदियां। अब एक प्रश्न है, सबसे सतयुग के संस्कारों को कैसे इमर्ज करें? यह मुरली में नहीं है पर कहीं सतयुग की बातें आई है, बहुत दूर है सतयुग, उधर 5,000 वर्ष और इधर अब हम खड़े हैं। कैसे इमर्ज करें? सतयुग के संस्कार इमर्ज हो जाए, संपूर्ण पवित्रता के संस्कार, सहज पवित्रता के संस्कार, कोई संघर्ष नहीं पवित्रता में, कोई लड़ाई नहीं काम विकार से, कोई लड़ाई नहीं क्रोध से, सहज देवता कैसे पवित्र थे, संपूर्ण थे, 16 कलाएं की संपूर्ण गुण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, निर्विकार थे, आत्माभिमानी थे, सतो प्रधान थे, डबल लाइट थे। सबसे पहला सतयुग के बारे में पढ़ना है। क्या करेंगे? पढ़ेंगे सतयुग के बारे में। सतयुग के बारे में कुछ मुरलियां हैं, 1980 की मुरली है, 7 और 10 तारीख जनवरी मास या फरवरी मास 1980 की दो मुरलियां सतयुग के बारे में। दूसरा, मुरलियों में आता है लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ और सोचो हम ऐसा बनने वाले, तो सतयुग के संस्कार इमर्ज होंगे। तीसरा, विजुलाइजेशन, मन की आंखों से देखना है उस नगरी को, कैसी होगी वो नगरी, कैसा वो आकाश होगा, कैसे वो महल होंगे, कैसे राज कारोबार होगा, कैसे खेल बाल होगा, पढ़ाई कैसे होगी, जो चीजें यहां दिखाई देती है उसका चिंतन वहां करना है, जो जो यहां दिखता है वहां क्या होगा उसका सोचना। सतयुग की क्लासेस है, दादी गुलजार की दो क्लासेस है, सतयुग का दिग्दर्शन, जिसने सुनी नहीं है वो सुने। उन संस्कारों को इमर्ज करना है, आह्वान करना है, अपने देव रूप को देखना है कि मैं ये हूं, तत्वमसि, आई एम दिस, और उसको लाना है। तो सतयुग के संस्कारों को इमर्ज करना है। तो 5 तत्व 5 विकार। अब बार बार ने इस मुरली में 16 समान दिए। मुरली की शुरुआत कैसी है, किस किसने पहले मुरली सुनी पहले वो बताओ, हाथ खड़ा करो। और बाकी लोग आने में लगे हुए थे, इसके लिए आज मुरली को छुट्टी, क्योंकि हम बीती थे और बाबा को भी पता है, ऐसा है ना, रात नहीं बुखार जैसा लग रहा है, कल अमृत वेला छुट्टी, क्योंकि बाबा को भी पता है हमको बुखार है। कोई कहता है टेम्परेचर देखू क्या थर्मामीटर से, नहीं देखना, अगर उसमें नॉर्मल आया तो हमको लग रहा है ना बोल दिया, बस दृढ़ संकल्प करना है, कैसी भी परिस्थिति हो दृढ़ संकल्प। अमर तवीर पुत्र है दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। गीत सुना मातृतुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वतंत्र करना है स्वयं को गुलामी से, दासता से, इंद्रियों की गुलामी और इच्छाओं की गुलामी और विकारों की गुलामी। सबसे पहला सवाल आज की मुरली से, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। कौन हो? स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्व के मालिक, अर्थात स्वयं के शरीर के मालिक, अर्थात इंद्रियों के मालिक, अर्थात मन के मालिक, अर्थात बुद्धि के मालिक, अर्थात संस्कारों के मालिक। माइंड धोखा ना दे, मन धोखा दे देता है, संस्कार धोखा दे देते, सोचते हैं ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, और कर बैठता है व्यक्ति। मनुष्य की साइकोलॉजी ऐसी है, एक चौड़ा रास्ता है, व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, बहुत बड़ा रास्ता है, एक पत्थर रखा है बाजू में, वो सोचता है ये पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, सोचने की जरूरत नहीं है पर वो सोचता है, इतना बड़ा रास्ता है वो आराम से जा सकता है, वो सोचता है ये पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, नहीं टकराना है, नजदीक जाता है, नजदीक जाता है, ये पत्थर से मुझे नहीं टकराना है, नहीं टकराना है, नजदीक जाता है और टकराता है। माइंड धोखा दे देता है कई बार, जो मन को कहो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वही करता है। उसको समझना है, जैसे छोटे बच्चे को कहो, जैसे साइकियाट्रिस्ट में सिगमंड फ्राइड हुआ है, इस संसार को उसने एक नया सिद्धांत दिया और जिसके वजह से सारे संसार ने उस सिद्धांत को स्वीकार किया और सारा संसार विकारी बन गया। उसने एक सिद्धांत दिया संसार को कि काम विकार का दमन ना करो, पर उसे भारत के तत्व ज्ञान का अध्यात्म की कोई खबर नहीं थी। उसने केवल इतना कहा कि काम का दमन ना करो नहीं तो विक्षिप्तता होगी, और सारे संसार ने उसको स्वीकार कर लिया और सारा संसार उसमें डूब गया। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के बाद फादर ऑफ साइको एनालिसिस उसको कहा जाता है। उसी के जीवन की एक कहानी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गार्डन में जाता है। शाम का समय होता है, वापस आते हैं, दोनों गेट पर पहुंचते पति और पत्नी पर बच्चा कहीं पर भी नहीं है। वो कहता है ढूंढो, सब जगह ढूंढते हैं, पति भी ढूंढता है, वो भी ढूंढती है, पर बच्चा मिलता नहीं है। बाद में सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से कहता है क्या तुमने उसको कहीं जाने से मना किया था? वो कहती है हाँ, वो जो फाउंटेन है उसमें जाने से मना किया था। वो कहता है जाओ वहीं है वो। उसकी पत्नी जाती है, वो बच्चा वो फाउंटेन में पैर हिलाते बैठा हुआ। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव, अगर उसको कह दिया जाए कि ये मत करो वही करता है, क्योंकि जबरदस्ती हो रही है। यदि उसे अच्छे से समझा दिया जाए बैठकर तो वो समझेगा। जबरदस्ती उसे कहो ये नहीं करना, सिनेमा नहीं देखना है, सिनेमा नहीं देखना है, सिनेमा नहीं है, फिर भी वही जाके देखता है। जैसे कहा दो मार्ग है संसार में, भोग का और दमन का। भगवान ने तीसरा मार्ग बताया, उसका नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। अभी भोजन खा रहे थे, इतना स्वादिष्ट भोजन, अब खाना ही है बस, कोई कान में आके कह दे इसमें जहर है तो आएंगे क्या? अरे बहुत अच्छा है, ऐसा रोज रोज थोड़ी बनता है। जैसे ही पता चल जाए वो फिश छोड़ दो, कोई तर्क नहीं। पहला सम्मान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, दूसरा सम्मान स्नेही आत्मा हूं। मुरली की शुरुआत है एक एक लाइन, मैं कौन सी आत्मा हूं? स्नेही अर्थात प्रभु से प्रेम करने वाली आत्मा हूं। दुनिया की आत्माओं से बहुत प्यार करके देख लिया, अब भगवान से प्रेम करने का समय है। संसार की आत्माओं से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और क्या दिया उन्होंने? क्या दिया? प्यार। प्यार तो नहीं देते, प्यार की तो परिभाषा ही उनको पता नहीं है। प्रेम तो निर्मोही होता है, संसार तो मोह को ही प्रेम कहता है। प्रेम तो अनासक्त होता है, संसार तो आसक्ति को ही प्रेम कहता है। प्रेम स्वतंत्रता है, मोह तो जड़े उसकी धरती पर है, प्रेम आकाश में। काम को ही संसार प्रेम कहता है। प्रेम में दास्ता नहीं है, प्रेम में गुलामी नहीं है, प्रेम में मालकियत नहीं है, परंतु जो मोह है वो कहता है मैं मालिक हूं, तुम दास हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन मेरे अनुसार चले। वो वासना है। तुम कौन की आत्माएं हो? स्नेही आत्माएं, दूसरा समान। तीसरा समान सिकिलदी आत्माएं हैं। सिकिलदी अर्थात लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। बिछड़ गए थे, खो गए थे, भटक गए थे, अभी वापस मिल गए। बाइबल में कहानी है, एक व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं, एक निकम्मा है, कुछ भी काम नहीं करता, छोटा, और बड़ा जो है बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर है। छोटा कहता है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, आधी आधी कर दो, बहुत हो गया। पिताजी आधा आधा कर देते हैं। छोटा जो होता है वो अपना सारा पैसा लेकर निकल जाता है और एक साल में सारा पैसा बर्बाद कर देता है, व्यसनों में और सभी बुराइयों में कंगाल हो जाता है, भिखारी बन जाता है। और जो बड़ा बेटा है वो बहुत सिंसियर है, इतनी मेहनत करता है, जितना मिला उससे और कई गुना बढ़ा देता है। और जो छोटा होता है उसको पश्चाताप होता है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं, क्या करूं, मैं तो भिखारी बन गया हूं। सोचता है क्यों ना कहीं नौकरी करूं, किसी से मांगू, फिर सोचता है मैं क्यों ना अपने पिताजी से ही कहूं कि मुझे नौकरी पे रख लो, मैं आपके यहां नौकर बन के काम करूंगा। और वो बताता है अपने पिताजी को, संदेश भेजता है मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही संदेश आता है भव्य समारोह का आयोजन होता है। पिताजी उसके लिए क्या क्या पकवान ये वो सब बनाते हैं। जो बड़ा बेटा होता है बहुत उदास हो जाता है, बहुत नाराज होता है ये देखकर कि इसने सब कुछ गवा दिया और फिर भी इसके लिए सब कुछ, मेरे लिए तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और जब छोटा बेटा आता है भिखारी, उसको पिताजी बहुत बहुत प्यार करते हैं। और बड़ा जब पूछता है ऐसा क्यों, तो वो कहता है, पिताजी कहते हैं तुम तो मेरे पास हमेशा ही थे, पर ये खो गया था, सिकी लगा, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, ये भटक चुका था, ये तो कहां से कहां चला गया था, इसको मेरे प्रेम की ज्यादा आवश्यकता है। वैसे हम भी भटक गए थे, वैसे हमको भी भगवान ने इतना कुछ दिया था, सब कुछ गवा दिया, अब हम फिर आए हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा दिल से रखते हैं, घृणा नहीं करता है, नफरत नहीं करता है, कभी ऐसा कहता है कि जो जो पतित बैठे हैं निकलो यहां से बाहर, मैं पतितों से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। पतित कहीं से ऐसा बोलता है? बोलता है पर बड़ा प्यार से बोलता है, अपने ढंग से। वो प्रेम है, वो प्रेम का सागर है, उसे घृणा करना नहीं आता है, उसने नफरत करना उसे नहीं आता है, चाहे कोई भी हो कैसा भी हो। उसके मन में निरंतर शुभ ही भावना है, दुरितान से सिमिर जाओ। तीसरा समान हम कौन सी आत्माएं हैं, सिखिलते। चौथा बेहद के सेवाधारी। चौथा समान आज की मुरली से हम कौन है, एक घर के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक सेंटर के नहीं है, एक प्रांत के, एक राज्य के, एक स्थान के, एक देश के भी नहीं, हम कौन है, विश्व के सार्वभौम के, विश्व की माजे घर। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, सबके लिए, छोटा सोच छोटी सोच नहीं, ये मेरा ये तुम्हारा ये उसका ये इसका, ये मनुष्य ने निर्माण किया है सारा। भगवान के लिए सब एक ही। हम बेहद में रहने के अभ्यास करना है, ऊपर नीचे नहीं, नीचे बहुत भीड़ है, ऊपर भीड़ है, नीचे द्वंद्व है झगड़े हैं, ऊपर प्रेम है, नीचे झगड़ते हैं सब, ऊपर रहना। चौथ पांचवा अनन्य आत्मा। अनन्य अर्थात तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं, ऐसे अनन्य हो, यूनिक हो। और इस ड्रामा की हर एक्टर यूनिक है, केवल यूनिक नहीं है, हर एक्टर मास्टरपीस है, उत्कृष्ट कलाकृति है। एक व्यक्ति जो सेवा कर सकता है दूसरा बिल्कुल उसके जैसा नहीं कर सकता। हम समझते हैं इसको, इसने पढ़ाई कम की है, इसका शिक्षण कम है, शायद इसको क्या आएगा, पर भगवान ने उसको चुना है ना, जरूर उसने कुछ विशेषता है, तभी तो उसको चुना है। इस ड्रामा की हर एक्टर, जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने ब्राह्मण आत्माएं यहां बैठी है, हर एक में कुछ ऐसी विशेषता है जो दूसरे किसी में भी नहीं है। इसके लिए बाबा एक बहुत युक्तियुक्त वाक्य कहते हैं, हर एक एक दो से आगे है। ऐसा वाक्य किसी भी लिटरेचर में नहीं है, कौन आगे है ये पता नहीं चल रहा है। हर एक कहां है, एक दो से आगे, मतलब दोनों में से कौन आगे, एक दो से वो आगे, ये उससे आगे और वो उससे आगे, ये आप सोचते बैठो कौन आगे। The other is ahead of the next. Anand. उसके बाद में छठवा समान योग्य आत्माएं। हम कौन सी आत्माएं हैं, योग्य। हमने योग्यताएं थी तभी तो उसने चुना, योग्यताएं नहीं होती तो चुनता था वो बिल्कुल नहीं। कौन सी योग्यता थी बचपन से प्यार था पवित्रता के लिए, पवित्र आत्माओं को देखते थे तो आकर्षण होता था, क्यों होता था, जरूर देवकुल की आत्माएं थी, प्यार था परमात्मा के लिए, प्यार था धर्म के लिए, प्यार था विश्व कल्याण के लिए। जो दुखी देखते थे तो आंसू आते थे, क्यों आते थे, क्यों क्यों हृदय द्रवित होता था, क्योंकि वो देवकुल की आत्माओं के लक्ष्य है। तो हम कौन सी आत्माएं हैं? योग के। अगला, हम योगी आत्माएं हैं। कल हम औरंगाबाद में थे और वहां पर एक डॉक्टर बहन हमसे मिले, जो कि हमको 20 साल के बाद मिले। जब हम MBBS कर रहे थे तब वो हमारे साथ थे। अभी दूसरी यात्रा कर ली जीवन की, पर कल जब उनसे मिले उसने एक बात बहुत अच्छी कही। वो हमेशा खुश रहते हैं, अध्यात्म से कोई खास लेना देना नहीं, पर खुश रहते हैं। उसने कहा, मुझे रुलाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कितनी अच्छी बात कही थी, मुझे रुलाने वाला। हमने कहा, आप हमेशा ही खुश रहते हो। हमारे साथ एक डीके भाई था, हम दोनों उनके घर मिलने गए थे। आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? कहती है, मुझे रुलाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है संसार। और ब्राह्मण आत्माएं रोती रहती है बस थोड़ा थोड़ा। संसार के लोग भी खुश रहते हैं कोई कोई। हम योगी अर्थात रोना प्रूफ, योगी अर्थात योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दिया है। योगी अर्थात अचल अडव, योगी अर्थात स्थित प्रज्ञ, योगी अर्थात मान सम्मान, जय पराजय, हानि लाभ सब समान है, कुछ भी उसको प्रभावित नहीं करता। आज सब लोग बहुत महिमा कर रहे, वाह 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 वाह, कल ग्लानी करेंगे। ना तो ग्लानी से प्रभावित, ना महिमा से प्रभावित, दोनों से अलिप्त, दोनों से डिटैच। ये योगी की महिमा है। तो हम कौन सी आत्मा है? योगी। अगला सोमान, हम निर्माण आत्माएं हैं। हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक है निर्माण छोटा न, एक है निर्माण बड़ा न। क्या अंतर है दोनों में? निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, निर्माण अर्थात मान नहीं अर्थात विनम्रता। पर निर्माण का एक दूसरा भी अर्थ है, और दूसरा अर्थ है निर्माण बड़ा न। छोटा ना दो शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी और नम्रता के लिए भी, पर बड़ा ना केवल कंस्ट्रक्शन। तो बाबा ने कहा, तुम कौन आत्माएं हो? निर्माण आत्माएं। अहंकार नहीं है किसी बात का। यह अहंकार है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या हमने किया? कुछ किया हमने? सब कुछ अपने आप हो रहा है। थोर अगर बना धरी अभिभाषा स्वभाव उपकार पराशर। अगला, ऊंचे समान में स्थित आत्माएं। रोज की मुरली से समान निकालने और सारे दिन भर अभ्यास करते रहना है उस समान का। जब तक ये कार्य नहीं करेंगे स्थिति डाउन होती जाएगी, क्योंकि जो जो वायुमंडल होगा वैसे वैसे हमारे विचार होंगे। विचारों की हलचल को रोकने के लिए ऊंचे समान की आवश्यकता है। तो ही ये विचारों की आंधी जो चल रही है, विचार धूल है। मन पर पड़ते रहते, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए समान। उसके बाद में अगला समान, नव विश्व के फाउंडेशन, नव विश्व के फाउंडेशन या उसके आगे का समान, विश्व के रचयिता। दो समान भी है यहां पर एक जैसे। नया जो विश्व बनने वाला है उसके हम आधार मूर्त आत्माएं। हम जो कर्म करेंगे वो विधान बनने वाला है उधर। यदि यहां पर हमसे विकर्म ही विकर्म हो रहे हैं तो क्या कहें? इसके पहले भी कहा था कि दादी प्रकाश मणि ने एक बार सभी मधुबन वासियों से पूछा कि जिसकी पवित्रता, हर एक अपनी पवित्रता का परसेंटेज लिख कर लाए। क्या करना है? प्यूरिटी का परसेंटेज लिख के लाना है। दूसरे दिन सब ने लिख के लाया चिट पेपर पर, नाम नहीं लिखना केवल परसेंटेज, और वो चिट पेपर बॉक्स में डालना है। सबने डाल दी। दादी ने कहा, जिसने अपनी प्यूरिटी का परसेंटेज 50% से कम लिखा है वो कृपया यहां से चले जाए, आउट, वो यहां रहने के लायक नहीं। क्योंकि इस यज्ञ का सबसे पहला नियम है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। संपूर्ण पवित्र। मनोहर इंदिरा दादी कहती थी, बाहर वाले लोग आबू वाले पूछते हैं, ये तुम्हारे ज्ञान सरोवर वाले बहुत ऐश करते हैं, खाना पीना सोना बस, काम तो थोड़ा बहुत कर लेते और बहुत आराम करते। दादी कहती थी, तुम लोग आ जाओ फिर रहो, कैसे रहेंगे, यहाँ ब्रह्मचर्य है, यहाँ प्यूरिटी है, वो करके दिखाओ और फिर करो, और केवल वही एंज कर सकते हैं और वही मजा कर सकते हैं जो प्योर है। अगला सामान पवित्रता के लाइट का ताज। तुम कौन सी आत्माएं हो जिनके पास पवित्रता के लाइट का ताज है? अपना ताज पकड़ के रखना, दिन भर हिलते रहता है, गिरता है, फिसलता है, ऐसे ऐसे चलते रहना। माताएं चलती है ना कलश लेकर, वैसे सारे कुमार ऐसे ऐसे चलना। अगला, दिव्य गुणों की माला धारण किए हुई आत्मा, गुणों की भट्टी करनी है। एक है ज्ञान भट्टी, एक है योग भट्टी, एक है सेवा की भट्टी, चौथी है गुणों की भट्टी। 36 गुण है, एक गुण को लेना, उस पर काम करना एक हफ्ता, अनुशासन। आज सारा दिनचर्या अनुशासन युक्त रही, या कभी भी उठना, कभी भी सोना और कभी भी कुछ करना। भट्टी, गुणों की भट्टी। अगला, स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित आत्माएं। कौन हो तुम? स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित, अकाल तख्त है, इस पर बैठे रहना हमेशा। इससे नीचे आए कि परिस्थितियां भयंकर लगने लगती है। अगला, तिलक, दिव्य तिलक धारी आत्माएं हैं। और लास्ट, तोलावा समान, प्रकृति जीत और माया जीत, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की। 5 विकार वश में परिवर्तित, 5 तत्व परिवर्तित सतयुग में, और जिसमें हमने कहा कि सतयुग के संस्कार इमर्ज कैसे करें। अब इस मुरली से आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो अपनी डायरी में लिखना है। सबसे पहला काम तो मुरली को पढ़ना है, होमवर्क बाद। पहला काम क्या करना है? मुरली को पढ़ना है। अच्छा, ये बताओ, 69 से लेकर 2017 तक सारी मुरलियां किस किस की पढ़ के हो गई? 69 से लेकर तो 2017 तक लेट एडमिशन ली है, और फिर एक दिन पेपर आएगा, कहेंगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमको तो पता ही नहीं। पता कैसे नहीं, वो मुरली में था, लेट एडमिशन तुमने ली। तो आज से, इस भट्टी से, आज की तारीख क्या है, 22 सितंबर 2019 से अगले एक साल में करेंगे। एक साल में हरे को बड़ा काम है, एकदम फटाक से हाथ मत खड़े करते ना, धर्मराज की अदालत है, इंद्र सभा, सारी की सारी अव्यक्त वाणियां पढ़नी है, लगभग 1100 है शायद। प्रफुल भाई कितनी है? 1100 ना, लगभग 1100। अगले एक साल में करेंगे, हाथ खड़े कर, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बहुत त्याग करना पड़ेगा करने के लिए, ऐसे नहीं होगा ये, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इतना जो टाइम वेस्ट कर रहे, टीवी मोबाइल इंटरनेट, यहां घूमू वहां घूमू, ये खाऊ वो खाऊ, खाऊ खाऊ म्याऊ म्याऊ, वो सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे लोग आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करते, मेडिकल की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते, दिन रात एक कमरे में पड़े रहते, बाहर भी नहीं निकलते, दाढ़ी बढ़ जाती है, कोई टाइम ही नहीं उनको, दिन हो रहा है, रात हो रही है, कुछ पता नहीं, दिन रात पड़े रहते हैं पढ़ाई करते हुए। जाके देखो मेडिकल एंट्रेंस की कैसी एग्जाम की पढ़ाई करते हैं लोग, पागल हो जाते हैं। वैसा डेडिकेशन चाहिए, वैसी आग चाहिए, आतिश, तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगले एक साल में 1100 व्यक्तवाणियां पढ़नी है, केवल पढ़नी नहीं, चिंतन मनन भी करना है, करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है? हरि पाठ। पाठ अर्थात एक बार पढ़ना नहीं, बार 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 पाठ पाठ पाठ। तो आज के लिए होमवर्क, सबसे पहले तो आज की मुरली पढ़नी है, एक। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल कैसे लाए, 7 स्टेप्स लिखनी है इसके बारे में। सेल्फ कंट्रोल कैसे लाए, अपना आत्म अनुशासन स्वसंयम कैसे बढ़ाए, 7 स्टेप्स। मैं अपने जीवन में क्या करूं सेल्फ कंट्रोल के लिए, वो लिखना है। दूसरा काम, विकार, 5 विकारों के सूक्ष्म रूप क्या क्या है, काम के सूक्ष्म रूपों की लिस्ट निकालनी है, क्रोध के सूक्ष्म रूपों की लिस्ट निकालनी है, लोभ के सूक्ष्म रूप की लिस्ट निकालनी है, मोह के सूक्ष्म रूप क्या है। बाबा कहते हैं अच्छा लगता है, लोभ। दादी जानकी ने कभी कहा था, हमेशा कहती है कि मैं ये देखती हूं जब विदेश जाती हूं तो पूछती हूं लोगों को, जब तुम दूसरे देश में जाते हो या दूसरे शहर में जाते हो, ऐसे कितने हैं जो वहां जाने के बाद कोई भी खरीदारी नहीं करके वापस वैसे ही आते हैं। नए देश नई जगह जाने के बाद पर्स ले लूं, बैग ले लूं, जूता ले लूं, चप्पल ले लूं, जैकेट ले लूं, साड़ी ले लूं, ये खरीदूं वो खरीदूं, ऐसे कितने हैं जो दूसरी जगह जाकर कुछ भी खरीद के सीधा वैसे ही आते हैं, या फिर जो है वो भी देके आ जाते हैं। वो है निर्लोभी। लोग मधुबन में एक बैग लेकर जाते हैं, कितनी बैग लेके वापस आते हैं? 3। क्या भरते हैं उसमें? जाते हैं शांतिवन तपस्या करने, आधा समय शांतिवन के बाहर मार्केटिंग शॉपिंग उसमें बिजी रहते हैं, ननद सासू बहू, इसके लिए वो, उसके लिए वो, इसके लिए वो, इसके लिए ये खरीदू खरीदू, वो खरीदू वो खरीदू। सोक्रेटिस था कभी, सुकरात विरक्त और सन्यासी टाइप का आदमी था, वो भी रोज मार्केट जाता था, एक एक चीज को देखता था, अच्छा ये पर्स, अच्छा ये बैग, अच्छा ये जूता। लोग पूछते थे तुम सन्यासी तुम क्यों जाते हो, तुमको खरीदना तो कुछ नहीं है। वो कहता था मैं इसलिए जाता हूं कि ये देखने के लिए कि कितनी सारी चीजें जिसके बिना मैं सुखी हूं। इसके लिए सुपर मॉल है ना, यहाँ है बड़ी जगह पर हो, मार्केट में जाके सुपर मॉल का चक्कर लगाना, क्या देखना, ये मेरे पास नहीं है फिर भी मैं सुखी, ये मुझे चाहिए भी नहीं फिर भी मैं सुखी हूं, कितनी चीजें हैं यहाँ पर जो जिनके बिना मैं सुखी हूं। ऐसा चिंतन करना तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा वैराग्य बढ़ेगा। तो विकारों के, 5 विकारों के सूक्ष्म रूप की लिस्ट, एक एक विकार के 7 सूक्ष्म रूप लिखने हैं। काम के सूक्ष्म रूप क्या है? एक तो है देखना, देखना अच्छा दिखता है, हैंडसम है, गोरा है, गोरी है, कोई भावना खराब नहीं पर गोरा है। दर्शन ऑफ, ये दूसरा। अगला जिसका उत्तर हमने दिया पर आपको अलग से लिखना है, सतयुग के संस्कार इमर्ज कैसे करें, कम से कम 14 विधियां, हमने 3-4 बताई केवल। सतयुग के संस्कारों को इमर्ज कैसे करें आज की मुरली से, तो इतने प्रश्न हैं, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। ऑप्शन सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और पिछले 1 घंटे में जो जो सुना मन ही मन रिवाइज करेंगे।